बीजों की प्रस्तुति।
गजर क्या है,
गजर की तरह विशेष अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियन की आवाज।
नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गजर और मैं हूं आपकी सहेली अलंकृता। कार्यक्रम के पिछले अंक में हमने बात की थी कुछ बच्चों से जो कि इस साल 12वीं का एग्जाम देने वाले हैं और उन्होंने तो अपने मन की व्यथा हमारे बीच रख दी। तो चलिए अब बातचीत करते हैं टीचर से और जानते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं बातचीत करने वाली हूँ कोकिला मैम से, तो आइए जानते हैं मैम के बारे में। मैम आप कितने सालों से लगभग इस टीचिंग करियर में हैं?
10 ईयर्स से टीचिंग प्रोफेशन में।
अच्छा, 10 सालों से हैं। और कौन सा विषय आप पढ़ाती हैं बच्चों को?
मैं साइंस पढ़ाती हूँ।
तो मैम ये टीचिंग करियर में आने के बारे में आपने कैसे सोचा?
टीचिंग मुझे बच्चों को पढ़ाना, उनको मोटिवेट करना बहुत अच्छा लगता। शुरू से ही मतलब था कि टीचिंग लाइन में जाए।
तो कह सकते हैं कि बचपन से ही आपको शौक था कि आप पढ़ाए?
जी हाँ जी।
अच्छा ये बताइए, क्या जब आप छोटी थी तो आप भी घर पे वो टीचर टीचर खेला करती थी?
जी हाँ, हम लोग भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते थे।
और आपका सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट मुझे लगता है साइंस ही रहा होगा?
जी हाँ, साइंस ही सबसे मेरा फेवरेट।
तो लगभग 10 सालों से आप पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चों के साथ ये सफर आपका कैसा रहा?
बच्चों के साथ तो बहुत अच्छा लगा, कई बच्चे आए कई गए, मतलब कुछ बच्चों के साथ बहुत सारा हमको कई नॉलेज भी मिला और बच्चों को भी हमने नॉलेज दिया।
अच्छा मैम मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, जैसे कि हम देखते हैं कि एग्जाम के समय बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं, तो एग्जाम को लेके टीचर्स क्या पूछते हैं? टीचर्स भी क्या बच्चों के लिए उतना ही परेशान रहते हैं कि बच्चे एग्जाम देने वाले हैं?
टीचर्स भी बहुत परेशान रहते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत, तो जैसे 10th के बच्चे हैं तो फर्स्ट टाइम का एग्जाम रहता है, 12th के तो एक बार फेस भी कर चुके होते हैं 10th के एग्जाम को, पर 10th के लिए बहुत फर्स्ट टाइम रहता है, तो उनको बहुत ज्यादा वो डर लगता है कि किस टाइप से एग्जाम होगा, कैसे पेपर आएगा। जैसे कि मेरी बेटी भी इस साल 10th क्लास में है।
अच्छा जी।
तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा घबरा रही किस टाइप से पेपर आएंगे, कैसा होगा एग्जाम, कि कहाँ जाएंगे, तो बच्चों को बहुत ज्यादा अंदर से घबराहट और डर रहता है कि हम वो एग्जाम दे पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कहीं से तो बुक में पूछ लेते हैं।
तो यानी कि टीचर्स भी उतने ही टेंशन में रहते हैं बच्चों के लिए।
जी हाँ।
बहुत बहुत शुक्रिया मैम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मित्रों अब जो हम अगली बातचीत करने वाले हैं वो है सुमन खरेजी से, तो आइए जानते हैं मैम के बारे में।
मैं बिलासपुर की रहने वाली हूँ और मेरे कॉलेज गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से कम्प्लीट हुआ है, मेरा ग्रेजुएशन भी वहीं से हुआ है, मेरे मास्टर्स भी वहीं से कम्प्लीट हुए हैं।
अच्छा, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप क्या विषय पढ़ाती हैं बच्चों को?
सोशल साइंस और सामाजिक विज्ञान।
तो मैम मैं समझ पा रही हूँ कि आप काफी यंग टीचर हैं और इस फील्ड में अभी नई नई जुड़ी हैं, तो आप क्या टैक्टिक्स और क्या स्ट्रेटेजी यूज करती हैं बच्चों के साथ जुड़ने के लिए, उनको नए नए तरीके से पढ़ाने के लिए?
एक्चुअली मैं सबसे पहले तो बच्चों को ये बोलूंगी कि किसी भी चीज को आप एकदम प्रेशर लेके मत पढ़ो। कोई अगर आपका सोशल साइंस, जैसे कि बहुत से बच्चों का स्टूडेंट्स का कहना ये होता है कि सोशल साइंस बहुत ही ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट हो जाता है, बट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, अगर आप कुछ चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है सबसे पहली बात। तो बस चीजों को ज्यादा प्रेशर लेके मत पढ़ो, एकदम आप नॉर्मली अच्छे से पढ़ेंगे उसको तो बहुत ईजी है बाकी सब्जेक्ट तो।
मैम सोशल साइंस के लिए तो बच्चों को यही कहना होता है जैसे आपने कहा कि बहुत लेंथी है, और मैम इतनी पुरानी चीजों को पढ़ के क्या करें, तो ये सवाल का सामना आपने भी किया है?
जी हाँ, सबसे फर्स्ट तो जैसे कि मैं हिस्ट्री से मैंने मास्टर्स किया है, तो जैसे कि मैं सामने वाले को बताती हूँ, जैसे कि सामने वाले पूछता पर्सन में से कि आपने मास्टर्स किसमें किया हिस्ट्री, तो सामने वाले पर्सन का कहना ये होता है कि वो हिस्ट्री उसको डेट याद कैसे होते हैं।
हाँ एग्जैक्टली।
हाँ ये क्वेश्चन होता है, तो बस शुरू से ये था कि हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता था मेरे को शुरू से। हाँ तो जो चीजें ये होती है कि जो चीजें आपको अच्छी लग रही है और आप वो चीजें करोगे तो आपके लिए वो चीजें इजी है, ऐसा है।
सही बात है। तो मैम बच्चों का मन आप किस तरीके से हिस्ट्री की ओर मोड़ती है?
जी ना, हिस्ट्री को आप एकदम ज्यादा ऐसा रीड मत करें, स्टोरी की जैसे थोड़ा नॉर्मली स्टोरी की जैसे चीजें बताइए, तो वो थोड़ा सा अच्छे से सुनेंगे तो उनको इंटरेस्ट आएगा चीजों पर।
जी मतलब मैं समझ सकती हूँ कि आपके बच्चों को हिस्ट्री की बहुत सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं।
जी जी, सारी ओल्ड स्टोरीज है, आप उस चीजों को न्यू के साथ जोड़िए, उसके बाद उस चीजों को लेके कुछ अच्छे तरीके से बताइए, तो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग तरीके से सुनेंगे उस चीजों को।
बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम्स के बारे में, तो पिछले हफ्ते हमने कुछ बच्चों से बातचीत की थी और एग्जाम्स पे उनके व्यूज लिए थे, तो इस बार मैं जानना चाहती हूँ कि एग्जाम के लिए आप कैसे तैयारी करवाती हैं बच्चों को।
एग्जाम के लिए तो सबसे पहले चीजों को रटो मत, चीजों को समझो और पॉजिटिव रहो कि हाँ हम कर सकते हैं, चीजों को लेकर ज्यादा प्रेशर मत हो एग्जाम को लेकर, एग्जाम तो आते जाते रहते हैं।
मैम पर जब बोर्ड के एग्जाम होते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, तो आप जब एग्जाम के लिए अपीयर करती थी तो आप कुछ स्ट्रेस रिलीजिंग एक्टिविटीज करती थी?
जी, एग्जाम के एक दिन पहले सबसे पहले आप मेडिटेशन कीजिए, और मैं तो ये बोलती हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले आप एकदम नॉर्मल हो जाइए, छोड़ दीजिए पढ़ाई, मतलब एक दिन पहले तो कुछ मत कीजिए प्रेशर में कि हाँ मैं एक दिन पे पढ़ के कि मैं कर लूंगा, तो ये चीजें मत कीजिए आप एक दिन पहले। मैं बोलती हूँ एकदम चिल रहिए, मस्त अच्छे से रहें, सेकेंड आप एग्जाम में तो अच्छे से पॉजिटिव होके जाइए।
ठीक है मैम, काफी अच्छा लगा ये जानकर कि टीचर्स को इस चीज का भी ध्यान रहता है कि उनके बच्चों को प्रेशर बहुत ज्यादा ना पड़े।
जी
शुक्रिया मैम,
थैंक यू।
तो श्रोता साथियों, दो टीचर से बात करने के बाद अब मेरे साथ एक और टीचर है, जानना चाहेंगे इनका नाम? ये है मैम भवदीप। तो चलिए जानते हैं मैम के बारे में। मैम अपना परिचय दे दीजिए हमें।
मेरा नाम भवदीप है, मैं शांति निकेतन स्कूल में हिंदी की टीचर हूँ।
तो मैम आपसे भी मेरा सवाल रहेगा कि आप कितने सालों से इस टीचिंग करियर में हैं?
मेरा अभी ये सेकंड ईयर ही है।
और आप हिंदी पढ़ाती हैं?
जी
मैम, हिंदी तो हम बोलते ही हैं, पर हम देखते हैं कि सही हिंदी का उपयोग कोई नहीं करता।
जी
तो सही हिंदी सिखाने के लिए आप क्या करती हैं मैम बच्चों को?
सही हिंदी सिखाने के लिए तो सबसे पहले बच्चों को जो उनका बेसिक है अनारम है वहाँ से शुरू करवाते हैं, चाहे वो कोई से भी क्लास का बच्चा हो, तो उनको पहले तो अनारम आना चाहिए, उसके बाद मात्राओं पे जाते हैं। अगर आप टेंथ में भी पढ़ रहे हैं तो आज के टेंथ के भी बच्चों को हिंदी लिखने में बहुत दिक्कत होती है।
Exactly,
बच्चों को सबसे पहले तो मात्राओं पे ध्यान देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लिख लिख के याद करना चाहिए, तो उनको मात्राओं में मिस्टेक नहीं होगा।
बिल्कुल, और एक चीज और होती है मैम, क्योंकि हम भारतीय हैं और हमारे देश में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, तो हर किसी को लगता है कि ये तो मुझे आता ही है, मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, पर वाकई में देखा जाए तो सही हिंदी का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। तो हिंदी टीचर होने के नाते जब आप किसी को ऐसे उत्पटांग से हिंदी बोलते हुए सुनती हैं तो आपके मन में क्या विचार आते हैं?
मेरे मन में ये विचार आता है कि आजकल के बच्चों को ऐसा हो गया कि हिंदी बोलने से भी बच्चे घबराते हैं, मतलब कि हिंदी को लो लैंग्वेज समझने लगे, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई गलत बोलते हैं तो मेरा ये रहता है कि उनको सुधारें, मतलब गलत उच्चारण ना कराएं।
एक चीज और इसके साथ देखते हैं मैम हम, कि जो बच्चे हैं आजकल, बच्चे के बड़े भी जो हैं आजकल, अधिकतर लोगों को हिंदी में गिनती गिनना नहीं आता, तो क्या आप अपनी कक्षा में हिंदी गिनती का भी प्रयोग करती हैं बच्चों के साथ?
हाँ करते हैं
मैम। आज हम बात कर रहे हैं एग्जाम के बारे में।
जी
तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हिंदी परीक्षा के लिए आप बच्चों को कैसे तैयारी करवाती हैं?
हिंदी परीक्षा के लिए बच्चों को जैसे उनका मॉडल पेपर है, 10-12 का है मॉडल पेपर है, तो जो निबंध पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, निबंध ज्यादा मार्क्स के आते हैं और निबंध आते हैं, तो उसमें ये नहीं है कि रट के लिखो, अपने से टॉपिक बना के उसमें लिख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अब तो टाइम नहीं बचता है बच्चों के पास, कम टाइम है, तो लिख लिख के नहीं अगर याद होता तो बच्चे जो याद कर सकते हैं कम समय में कैसे याद कर सकते हैं, जैसे टॉपिक याद कर लो अंदर का टॉपिक से लिखा जा सकता है बोर्ड में, तो ऐसा मॉडल पेपर सबसे उनका बेस्ट तरीका है पढ़ने को।
मैम जब आप पढ़ाई किया करती थी
जी,
तो आप हिंदी के लिए कैसे तैयारी किया करती थी?
हिंदी के लिए मैंने भी मॉडल पेपर का सहारा लिया था, और शुरू से ही साल भर पढ़ो तो फिर लास्ट तो अच्छा ही जाएगा, शुरू से ही साल भर पढ़ा था हिंदी को, और निबंध पे ज्यादा फोकस था और पत्र है, क्योंकि ये ज्यादा मार्क्स के आते हैं तो इनमें ज्यादा फोकस रहता है, और बस मॉडल पेपर है, परीक्षा बोर्ड है और टीचर की गाइडेंस है।
बिल्कुल मैम, टीचर की गाइडेंस तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है।
हाँ।
बाकी आजकल के बच्चे इंग्लिश को ज्यादा सरल समझते हैं, जबकि जो हिंदी भाषा है असल में वो हूबहू जो हम बोलते हैं हम वही लिखते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम देखते हैं CUT कट होता है और CUT पुट होता है, दोनों चीजें काफी अलग हो जाती हैं, पर हिंदी में जो हम बोलते हैं हम वही लिखते हैं, फिर भी बच्चे हिंदी को बहुत कठिन समझते हैं और बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं। तो बच्चों को एग्जाम के वक्त क्या करना चाहिए स्ट्रेस से डील करने के लिए?
बच्चों को पहले तो अपने माइंड से ये निकाल देना चाहिए कि हिंदी कठिन है, मतलब उन्होंने माइंड सेट बना लिया कि हिंदी कठिन है, तो पहले तो यही हटाना चाहिए हिंदी कठिन है। फिर उसके बाद जो बन रहे हैं पहले उस पर फोकस करें, जैसे उनसे निबंध नहीं बन रहा है तो जो फिलअप्स बन रहे हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है कि ज्यादा मार्क्स चाहिए, तो जो पहले फिलअप्स है उन पे कोशिश करें क्योंकि वो तो दिए ही रहते हैं ऑप्शन में, तो उसमें ध्यान दें। फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े क्योंकि इकट्ठा तो नहीं बढ़ा जा सकता, तो छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन के हो जाए, और अपना माइंड सेट को ये कर ले कि हमसे हिंदी बन जाएगा, पॉजिटिव हो जाए उस चीज के लिए तो वो बन जाता है।
जी मैम, हम दोनों चीजें साथ साथ देखते हैं, वही पे कुछ बच्चे सोचते हैं कि हिंदी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और वही कुछ बच्चे जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं उन्हें लगता है कि उसको लिखना बहुत कठिन है।
जो हमारे स्कूल में भी है, हाँ, और बच्चे कई अच्छे से लिख लेते और कई नहीं लिख पाते। तो
अंत में मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी जो स्टूडेंट्स अपियर करने वाले हैं एग्जाम, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
उनको बस यही बोलना चाहूंगी कि बच्चे अपने एग्जाम के लिए पॉजिटिव रहें, ज्यादा प्रेशर मत लें, अपना जो टाइम टेबल बना के पढ़े, जैसे जो टाइम को अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दे, जिसमें ज्यादा वीक है उनमें ज्यादा टाइम दे, और जो डिस्टर्ब करने वाली चीजें हैं उनको उनसे दूर रहें, सोशल नेटवर्किंग है उससे दूर रहें और अच्छे से पढ़ाई करें।
ठीक है मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। प्रिया, तो अब हमारे साथ है एक और टीचर, उनका नाम है उषा सोनी, तो चलिए सुनते हैं उषा जी के बारे में कुछ बातें।
मैं जानकी जिला से बिलोंग करती हूँ मैम, और मैं यहाँ कोचिंग करने के लिए आई थी बिलासपुर में। मैंने यहाँ बीएड किया है, सीटेट क्लियर किया है
जी,
और मेरा 5 साल का अनुभव है कोटेश्वर नारायण जांजगीर जिला चापा में। अच्छा। मैं संस्कृत की टीचर रह चुकी हूँ।
बहुत बढ़िया मैम, तो अभी आप बच्चों को संस्कृत पढ़ाती हैं?
जी मैम।
संस्कृत तो कहा जाता है कि देवों की भाषा है।
हाँ, देववाणी संस्कृत
जी, और उतना ही कठिन है संस्कृत के धातु रूप और विभक्तियों को पढ़ना, तो इसको बच्चों को पढ़ाने के लिए आप क्या तरीके यूज करती हैं?
तरीका ये है मैडम कि संस्कृत क्या है, इतना भी कठिन नहीं है यदि ध्यान दिया जाए तो, जैसे कि हिंदी है, इंग्लिश है, इन सब में ग्रामर रहता है, उसी तरीके से संस्कृत भी एक सब्जेक्ट है जिसमें व्याकरण की कुछ ऐसी बिंदुएं हैं जो थोड़ा कठिन कहना चाहिए उसको, लेकिन क्या है उनका फॉर्मूला आता है, तो बच्चे अगर शुरू से 6th लेवल से ही पढ़ रहे हैं, यहाँ तो 3rd लेवल से चालू हो जाता है, 3rd है 4th है, तो धीरे धीरे उन चीजों को फॉर्मूला का उपयोग करते हुए यदि हम सिखाते जाए तो संस्कृत भी उतना कठिन नहीं है। क्या है विसर्ग है, हलंत है, उच्चारण है, इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी होता है।
जी मैम, तो मैम अभी जो बच्चे बोर्ड के लिए अपियर कर रहे हैं,
हाँ,
उनको संस्कृत में किस चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए?
अब अभी तो जगत के पद्य है, उसका जो अर्थ होता है उस पे अच्छे नंबर रहते हैं मैडम, और संधि समास है उस पे नंबर मिलते हैं, निबंध है, आवेदन पत्र है, अपनित प्रत्यांश है, इन सभी चीजों को यदि वो ध्यान दे, क्योंकि एक समय में लाइफ के बाद रटना उतना अच्छा नहीं रहता है जितना समझना रहता है चीजों को, समझ गए तो थोड़ा अच्छे से लिख पाएंगे पॉइंट टू पॉइंट।
जी मैम, मैम क्योंकि आपने बताया कि आपका 5 सालों का एक्सपीरियंस रह चुका है
जी,
तो मैं जानना चाहूंगी कि इस बीच आपका पाला किसी ऐसे शैतान बच्चे से पड़ा जिसकी शैतानी आपको आज भी याद हो?
हाँ मैडम, कई बच्चे रहते हैं हर क्लास में, 2-3 निकल ही जाते हैं।
मैम कुछ ऐसे एक आध किस्से हमारे साथ भी शेयर कीजिए।
हाँ, एक लड़का था, मतलब मैं पढ़ाती थी 9th स्टैंडर्ड में, वो इतना बदमाश था, कितना भी पढ़ाओ कहीं भी ध्यान नहीं, बिल्कुल भी ध्यान नहीं, तो फिर जब उसकी शैतानी को कम करने के लिए हमने एक उपाय किया, हमने किया कि अब यही पढ़ाएगा, यही चीजों को समझाएगा, यही हमसे ट्यूशन लेगा, तो फिर उसको 1 घंटे आराम से पढ़ाने के बाद शांत में उसके कहने के व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आता गया, तब वो चीजों को समझने लगा, और शैतानियां तो इतनी करता था मैडम की, अब वो बोलते है ना कि एक क्लास पूरा शांत है लेकिन एक के कारण पूरा माहौल बिगड़ जाता है
जी जी,
बिल्कुल 40 मिनट बस उसी के पीछे, तुम स्कूल क्यों नहीं आते हो, तो मैडम मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तो आज मेरे घर में पानी नहीं आया, तो आज मेरी मम्मी नहीं थी, तो टिफिन नहीं बना था, मतलब अनेकों बहाने उनके पास अवेलेबल रहते थे।
तो काफी सारे बुरे हिस्से आप लोग का मिलना जुलना होता है, और कुछ अच्छी यादें बनती है तो कुछ छठे यादें बनती है।
हाँ, कुछ अच्छी बातें, जैसे कि बच्चे बदमाश रहते हैं वो लोग थोड़ा और चीजों में आगे रहते हैं, जैसे बच्चे बारे में बताई, वो शैतानी में आगे था बट उसके साथ साथ क्रिकेट अच्छा खेलता था, फुटबॉल अच्छा खेलता था, तो कुछ यादें अच्छी भी रहती है।
मैम क्योंकि अब एग्जाम शुरू हो चुके हैं सब चीजों के, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं बस ये मैसेज देना चाहूंगी कि वो एक टाइम टेबल बनाए, जिन जिन चीजों को वो नहीं जानते हैं डाउट क्लियर करना है, उन टीचरों के कॉन्टेक्ट में रहे, निशान लगा ले, जाके बोले कि हाँ मैडम या हाँ सर ये मेरे को समझा दीजिए, तो जैसे जैसे उनके डाउट क्लियर होते जाएंगे उनका एग्जाम अच्छे से बनते जाएगा। जितना वो शांति से पढ़ेंगे, चाहे एक रूटीन के हिसाब से पढ़ेंगे, तो वो अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे।
जी मैम, बहुत ही अच्छी सलाह दी आपने सारे स्टूडेंट्स को, और काफी अच्छा लगा आपसे बात करके मैम, शुक्रिया। तो श्रोता साथी अभी मेरे साथ हैं राकेश गुप्ता जी, जो कि शांतिनिकेतन स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं। तो आइए सर से जानते हैं कि डायरेक्टर प्रिंसिपल होने के नाते उन्हें तो सारे स्कूल के स्टूडेंट्स की चिंता रहती है, तो अभी एग्जाम्स के लिए उनके क्या विचार हैं बच्चों के प्रति?
एग्जामिनेशन के लिए हम सब बच्चों को बोल रहे हैं कि रात को आप ज्यादा देर जागिए मत, 8 घंटे की नींद से सोइए और रेगुलर पौष्टिक खाना खाइए, और जो साल भर पढ़े उसको रिपीट करें लिखकर, और दिमाग में किसी भी प्रकार का टेंशन न ले, इसे उनके पेपर अच्छे बनेंगे।
तो सर अभी एग्जाम सबके स्कूल के भी स्टार्ट हो चुके होंगे?
स्कूल की एग्जाम 19 फरवरी से स्टार्ट है, अब बोर्ड के एग्जाम 1 और 2 मार्च से स्टार्ट है, और बच्चों को हम लोग हमेशा ही सलाह देते हैं साल भर पढ़िए, लगातार पढ़िए, भले आप थोड़ा थोड़ा पढ़े
जी,
एकदम से अचानक न पढ़े, और जब भी कोई भी आंसर लिखे तो उसका डिटेल लिखे, तो राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो भी परीक्षा के उसको समझ में आए।
जी सर, काफी अच्छा लगा जानकर कि टीचर्स के साथ प्रिंसिपल सर को भी इतनी टेंशन होती है अपने बच्चों के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सर, शुक्रिया।
तो सुनिए आपने टीचर्स की बात, जितने टेंशन में स्टूडेंट्स होते हैं अपने एग्जाम के लिए, उतने ही टेंशन में टीचर्स भी होते हैं अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम के लिए।
इसी के साथ अब वक्त हो चुका है मेरा आपसे विदा लेने का, फिर मिलूंगी आपसे अगले सोमवार लेकर गजब की टिंग के साथ बिलासपुरियंस की आवाज़। जरूर बताइएगा कि बिलासपुरियंस की आवाज़ का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मस्ती करते रहिए, शरारत करते रहिए, और सुनते रहिए अरपा रेडियो।
गजर की तरह विशेष अंदाज में अपनी आवाज के साथ बिलासपुर वासी,
बिलासपुरियंस की आवाज,
ये है आपका अपना अरपा कम्युनिटी रेडियो बिलासपुर और अरपा वेब रेडियो। गजर की तरह।